معاشرتی فرائض ہیں، پابندیاں ہیں جو بندے پر عائد کی گئی، معاملات کی لائن سے اور پھر اخلاق کی لائن سے اپنے اخلاق کو سدھارنا سنوارنا. اپنے اللہ نے غصے کی طبیعت بھی رکھی ہے اور انسان کے اندر محبت کی طبیعت بھی رکھی ہے. محبت میں اور غصے میں دونوں میں وہ اعتدال کی حدوں کو میاں روی کی حدوں کو پھیلان کر بے اعتدالی کی طرف جاتا ہے اور حرام تک اپنے آپ کو پہنچاتا ہے, حرام چیزوں کو حاصل کرتا ہے. غصے کی طبیعت روکتی ہے اور محبت کی طبیعت کسی کی طرف لپکتی ہے. تو غصے میں وہ رک جاتا ہے ایسی بھی چیزوں سے جسے وہ کرنا ہے, اور محبت میں لپک جاتا ہے ایسی چیزوں کی طرف بھی جسے نہیں کرنا. حرام کے اندر وہ پڑھ رہا ہے, حرام کو وہ چاہ رہا ہے کیونکہ محبت کی تعداد اس کے اندر فطرت اس میں رکھی گئی. تو وہ اپنے آپ کو روکے ان حدوں پر, یہ ضروری ہے. تو معاملات کے اندر اخلاق کے درمیان اخلاق کو بنیادی طور پر غصے کی صفت کو اور خواہش کی صفت کو اس کو کہتے ہیں. مزاری علی رحمان نے لکھا ہے کہ یہ جو انسان جامع حیوانات ہے, ہر اعتبار سے اللہ نے انسان کی ذات کو جامع بنایا ہے. بنیادی طور پر اس کے اندر دو خواہشیں رکھی ہیں, دو قسمتیں رکھی ہیں, دو قسم کی طبیعتیں رکھی ہیں. ایک خواہش جس کو بولتے ہیں, غصہ جس کو بولتے ہیں. خواہش کو انہوں نے نام لیا ہے سور کی صفت سے, دلوی کی صفت سے. غصے کو انہوں نے نام لیا ہے کتے کی صفت سے. کہتے ہیں کہ خواہش کا سور اور یہ غصے کا کتا جب تک انسان کے اندر سمبھلتا نہیں ہے, وہ بندہ پھر انہیں جانوروں میں شامل ہوتا ہے. تو ان یہ صفات اپنی درست کر کے اس طریقے کو ادا کرنا یہ ہمارے سارا کا حصہ ہے. جب یہ چیزوں کو بندہ پورا کرتا ہے, اپنی ان چیزوں کو سدھارتا ہے, تب جا کر وہ ایمان اور ہمارے صالح کا پابند سمجھا جاتا ہے اور اس پر اللہ کے باتیں. اور جب بندہ یہ حال میں آگے معبول میں آتا ہے, ان چیزوں کو قبول کرتا ہے, اپنی زندگی میں ان چیزوں کو زندہ کرتا ہے, تب جا کر اللہ کے جو باتیں پریشانیوں کے دور ہونے کے, پریشانیوں کی پریشانی محسوس نہیں ہونے کے, وہ پورے ہوتے ہیں. پوری سرزمین کی, پوری زمین کی خلافت یعنی اسلامی حکومت اور پورے مذہب اسلام کا دنیا بھر کے اندر غلبہ, یہ دوسرا وعدہ. اور ہر قسم کے خوف سے امن, یہ تیسرا وعدہ. یہ تین چیزیں اللہ پاک ایمان اور ہمارے سارے کی برکت سے دیتے ہیں. اگر کسی فرد میں یہ چیز ہوگی تو اس فرد کی زندگی میں یہ چیزیں وہ دیکھے گا, اور اگر کسی یعنی اپنی حد تک اپنی حدود تک اس کی فرد کی جو حدود ہے ان حدود میں ان چیزوں کو وہ دیکھے گا. اللہ پاک اس کو امن دے دیں گے, ہر خوف سے امن دے دیں گے. نہ دنیا کے اندر اس کو پریشانیوں کا زیادہ پریشانی محسوس ہوگی, نہ تکلیفوں کے اندر بےقراری اس کو ہوگی, نہ بیماریوں کے اندر اس کو بیماری اللہ کا عذاب لے لے گی, نہ تندرستی اس کے لیے بغیر نجات بنے گی. یہ ہوتا ہے, یہ ہوا ہے. اللہ پاک کے وعدے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے, فرض کیا تو فرض کو اس کو آدھا ملا حاضر پورا ہوا ہے. اور اگر کسی جماعت میں, کسی معاشرے میں, کسی شہر میں, کسی ملک میں, اور اگر کئی ملکوں نے اس کو اختیار کیا ہے, اسلام کو اپنے اندر زندہ کیا ہے, تو اللہ پاک نے اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اللہ کے حکموں کے آگے جب اپنی خواہشوں کو قربان کر دیا جاتا ہے تو اللہ پاک سے ایسا نوازتے ہیں کہ اس نوازنے کی کوئی حد نہیں ہوتی, اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی. بندے نشان بھگوان میں اس کا قیام تک نہیں آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کی نیت سے گھوڑے پالے, گھوڑے کے بچے. جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کے معائنے کے واسطے تشریف لے گئے, کہا کہ بھائی گھوڑے نکالو, ان کو جہاد کے لیے تیار کیا گیا. وہ معائنے کے اندر اس کو دیکھنے میں, دیکھنے دکھانے میں اتنا وقت لگ گیا کہ اس وقت کے اندر ان کی روزانہ کا ایک عبادت کا ایک معمول تھا, وہ عبادت چھوٹ گئی, وہ معمول چھوٹ گیا. یہ جو کام تھا, یہ کام اس عبادت اور معمول کے مقابلے میں اہم نہیں تھا, یہ غیر اہم تھا, وہ عبادت اہم تھی. انہوں نے کہا کہ ایک غیر اہم چیز نے اس کو اہم سے غافل رکھا. سارے کے سارے ان گھوڑوں کو انہوں نے دبا کر ڈالا, مار ڈالا. یہ گھوڑوں کا نقصان دیکھنے کی چیز نہیں ہے, وہ جذبہ دیکھنے کی چیز ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. انہوں نے انسانوں سارے گھوڑوں کو دبا کر ڈالا, اور پھر اللہ کے حکم سے, یہ اللہ کی اطاعت سے یہ مانے بنے, جان بوجھ کے بھی نہیں. اور پھر کا احساس نہیں ہوا, معائنے کے درمیان وہ وقت نکل گیا, عبادت شروع کی معمول رہ گیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز مانے بنے رکاوٹ بنی, اس رکاوٹ کو میں ختم کرتا ہوں, ختم کیا. اس کے بعد دعا کی ابھی ابھی من اللہ بھائی یہاں بھی نمبا بھی میں چند الوقع کہ مجھے ایسی بادشاہ دیجیے جیسی بادشاہ آپ نے کسی کو دی نہیں ہے. اللہ نے کہا سب کا میں لہو ریخ کر لیے ہم یہ روحا اندھے طور پر ہوا کو ہم کے تابع کر لیا. آج بھی ہوا ہمارے تابع ہے, ایک گرین کی شکل میں, دوسری اور شکلوں میں, लेकिन कहते दावे है कि सपा हमारा जो रिप्रेजेंट का है उसमें खतरे ही रहते हैं। उनके उनको जो हवा आगे करके दी गई कि अल्लाह के हुक्मों को मानने की वजह से और उसी वजह से उसकी शान अलग ही थी और आज भी वो हमें रखी है उसकी हालत ऐसी है। वहां यहाँ खतरे ही खतरे हैं, वहां खतरे का नामो निशान नहीं। महीनों के सफर को मिनटों में नहीं किया जाता था, महीनों में जो सफर होता था जहाँ पहुंचने के लिए महीने लगता है, मिनटों में वहां का सफर हो रहा है। अच्छा फिर बड़ी हैबत होती होगी, बड़ा डर लगता होगा, गिर जाने का भाव, हवाओं के कुओं के अंदर ओचनी होने का भाव, आवाजें जैसे हमारे प्लेन की परेशान करती है, वैसे कोई परेशानी की बात होगी। दूसरे और किस्म के हमारे एक्सीजन अगर नसीब नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन यूज करने का मतलब हो रहा है, गिरने का मौत है, वहां कोई किसी किस्म का मौत नहीं था। अल्लाह पाक ने दौलत उनको नसीब कर दी, जिन्नात को उनके ताबे कर दिया, और जिन्नात के जरिए जो है वो ऐसी ऐसी किस्मतें किया करते थे कि हौज बड़े कुएं जितने होते हैं, तालाब जितने होते हैं, हौज जितने होते हैं, इतने बड़े बड़े लगन और बर्तन लोग उनके लिए बनाए जाते हैं। जिन्नात को हुक्म दिया था कि कुछ स्थान पर लगे हुए अब वो समुद्रों के अंदर दरियाओं के अंदर घोड़े लगा देते और दवाएं निकालने से हमेशा समाज सलामी की खिदमत में पेश करते। एक शहर उन्होंने जिन्नात के जरिए से तामीर करवाया उनका, और वो वहां निगरानी कर रहे थे। सलाम ने जिन्नात को पाबंद किया कि तुम्हें ये शहर तामीर करना है, वो शहर शहर की तामीर में जिन्नात लगे हुए हैं, ये निगरानी कर रहे हैं। और ऐसा रोबोट आप था कि कहते हैं कि आज आमीन कहते हैं कि आज की शहर के नजर सुलेमान की कसम खाते हैं जब वो भागते हैं, जब उनको सजा दी जाती है। एक बातों पर शैतान सवार हो गए, जिन्नात सवार हो गए, तो उनके ऊपर से जब भगाया गया उनको सजा दी गई, जिन्नात को सजा दी गई आमिर ने, उन्होंने कहा कि हम सलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खा के कहने के दोबारा नहीं आएंगे। तो आज तक उनका रोह बना काफी है कि हैबत अल्लाह ने उनको दी थी वो भी जिन्नात पर, जिन्नात जैसी मखलूक पर। तो हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम सलाम ने शहर की तामीर पर उनको लगा दिया और निगरानी में उनको रखे। उन हजरत सलेमान का वक्त आगे आ पहुंचा, आप अपने हसा पर तेल लगाए हुए बैठे थे, आपकी रूह कब्ज हो गई लेकिन मौजूद है, अता के सहारे से उस अता को दीमक खाना शुरू कर, दीमक ने खाना शुरू कर दिया। जब उसको पूरी तरह से उसको दीमक खा गई और वो फिर अता गिर गया, हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम की अपने उनके इंतकाल हो चुका था, विकास हो चुका था, तो अपने होश अपने जिसम को संभाल नहीं पाए तो वो गिर पड़े। तब से आ करके जिन्नात को पता चला कि ये तो इंतकाल कर चुके हैं, वो कहने लगे अगर हमको पहले पता होता तो हमको पास भी होते सजा में मुबतला नहीं होते शहर के सामने। तो ऐसा मोहब्बत अल्लाह पाक ने उनको दिया था वो वही है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्मों पर अपने ख्वाहिश को और अपने चही भी चीजों को बना कर दिया था, मिटा डाला था, कुर्बान किया था, निकाल दिया था। तो ये सिला पहले अल्लाह के लिए अपने आप को मारना पड़ता है, फिर अल्लाह दुनिया को आखिरत को हमारे ताबे कर दे। पहले अल्लाह के लिए अपने आप को फना करना पड़ता है, पहले अपने ख्वाहिशों को छोड़ना पड़ता है, पहले उनके हुक्मों को पूरा करना पड़ता है। जब ज्यादा वादे आते हैं ऐसे हम शुरू नहीं किए, ऐसे अल्लाह की बरकत से उतर जाए, जैसे हमने दो रकात पढ़ी मतलब हमने जिंदगी खड़ी ले कह रहा है, ऐसा नहीं हुआ करता। उनके लिए जिंदगियां लगानी पड़ती हैं, तब जाकर के नस्लों की इलाके फैलते होते, उम्मतों की इलाके फैलते होते, बरकतों के घर और मेहनतों के घर जब खोले जाते हैं। सलाम ने सहाबा के एक लश्कर को अबू उबैदा बिन जर्रा की क़यादत में एक जगह भेजा अमीर जुहैना पर हमला करने के लिए। उनके साथ में जो तोशा था, जो खाने पीने का सामान था, वो खत्म हो गया। ज्यादातर उनका उनके पास खजूर हुआ करती थी, जब तक वगैरह हुआ करता था वो खत्म हो गया, तो खजूरों की गुठलियों को खाकर जिहाद किया, वो भी खत्म हो गए, यानी खजूर भी बाकी नहीं रहे, खजूर की गुठलियां भी नहीं रही। तब उन्होंने दरख्तों के पत्तों को पानी में डुबो कर अपनी गुजा बनाया। उसके बाद अल्लाह पाक ने समन उनके लिए निजाम जैसा किया खाने पीने का। समंदर में एक मछली को उठाकर फेंका हुआ, इतनी बड़ी मछली थी 300 सहाबा ने 18 दिन तक मछली को खाया, 300 सहाबा ने 18 दिन तक मछली को खाया। उन्होंने उसकी एक पतली को जो सबसे छोटी थी, उसकी पतलियों में जो सबसे छोटी पतली थी उसको लेकर खड़ा किया और कहा कि इन तीन अपने 300 अपराध में से जो सबसे लंबा है वो आए, उसको बुलाया। फिर कहा कि जो सबसे लंबा ऊंट है उसको लेकर आओ, उसको लाया गया। तो कहा कि वो सबसे लंबा था, इस सबसे ऊंचे ऊंट पर बैठे और फिर ये इसकी पत्नी के नीचे से, हड्डी के नीचे से गुजरे। जब वो गुजरा तो उस शब्द का जो ऊंट पर बैठा हुआ है सबसे लंबा है, उसका सर तक उस हड्डी के सिरे को मिला था। ये सबसे छोटी पत्नी का हाल था। अल्लाह से दावा कहते हैं कि हम खा कर सर तरबल हो गए, तंदुरुस्त हो गए। और आपने इतना तो सलाम के खिदमत में आकर अर्ज किया रसूल अल्लाह ऐसा वाकया पेश आया तो कहा कि हाँ अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए नजम किया था, तुम्हारे खाने के लिए नजम किया। तो फरमाया अगर उसमें से कुछ हिस्सा बाकी हो तो लेकर आओ, तो साथ में लेकर गए, फिर आपने भी उसमें से कुछ फरमाया। अल्लाह के लिए जब हुक्मों को पूरा किया गया, बातें किए गए, तो अल्लाह ने ऐसा किया कि खाते खाते साहबों से सार हो गए। सलाम ने कुर्बान किया अपने जानवरों की जहीद जानवरों को, घोड़ों को, अल्लाह पाक ने ऐसी चीजें उनको रसूल दुआ की वजह से कुर्बानी की बरकत से कि आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक जिन को आप सलाम ने पकड़ा था शैतान को, फिर उसको कैद करना चाहता ये कहकर छोड़ दिया कि मेरे भाई हजरत सुलेमान ने अल्लाह से ऐसी बादशाहत मांगी है जिसकी मिसाल नहीं, अगर मैं भी कैद करूंगा तो मुझे मैं उसकी मिसाल बन जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि उनकी दुआ रद्द हो जाए, इसलिए मैं इसको रिहा कर देता हूँ, रिहा कर दिया। ईमान और अमल सालेह ये शर्त है परेशानियों के खत्म होने की, अगर ये नहीं होगा तो फिर उम्मत परेशानियों में हमेशा मुबतला रहेगी, और न सिर्फ परेशानी में बल्कि अजाबों में मुबतला होगी। हमारा हाल यह है कि हम जिस परेशानी में है उस परेशानी को खत्म करने के वास्ते एक नया गुनाह करते हैं। परेशानियां हम पर है गुनाहों की वजह से, और उस परेशानी से निकलने के लिए करते हैं एक और नया गुनाह। बीमार है तो इंटरटेनमेंट के लिए टिकट खोल के बैठ गए, इंटरनेट खोल के बैठ गए, हमारे गुनाह खुले खुले हैं बिल्कुल, अल्लाह की तरह से हम बगावत करते हैं। हमारे मॉडरेट के अंदर है ये चीजें, मर्दों के अंदर है, औरतों के अंदर है, बड़ों के अंदर है, छोटों के अंदर, औरतों के अंदर की बुराई अजीब है, मर्दों के अंदर की बुराइयां अजीब है, बेपर्दगी किस कदर आम हो गई मुसलमानों के अंदर, गैर मुस्लिमों में नहीं मुसलमानों में, मुसलमान खवातीन है किस कदर बेपर्दगी है, निकाब नहीं हिजाब नहीं तो अलग चीज है, लिबास भी नहीं। अरे मुसलमान की बेटियों का ऐसे आयशा जैसे खदीजा की बेटियों का उनके मानने वालियों का हाल है। उसने फरमाया कुल उम्मती मुआफ़ इल्ला मुजाहिदीन, मेरी उम्मत के सारे गुनाहगार बख्शे जाएंगे, जो खुल्ला खुल्ला गुनाह करेंगे उनकी माफी नहीं है। बेपर्दा होकर घूमना ये कोई छुपा हुआ गुनाह तो नहीं है, बच्चों की इस्लामी तरबियत नहीं है, बच्चों को इस्लामी मिजाज बनाने का माहौल नहीं है, दीनदार रिश्तों से घबराते हैं, वो रिश्ता नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास पता करना पड़ेगा, ये बोलने के बाद मुसलमान रहता भी है आदमी, वो रिश्ता नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन है, हिदायात है, उनको इस्लामी माहौल में जाना पड़ेगा, इस्लामी माहौल पसंद नहीं है तो मुसलमान होगा कोई, मुसलमान खवातीन में ये बीमारियां आम है और खुला खुला है। को फोन आया और मुझे आगे रिश्ते की बात हुई, रिश्ते की बात में उन्होंने इसका हवाला दिया कि मुला साहब से बात करके देखो, कहा कि उनके पास तो इस्लामी पाबंदियां बहुत है। फोन रखने के बाद में अजवाली साहब फरमा लिया कि मेरे हिसाब से तो ऐसे लोग मुसलमान बाकी नहीं है, इसको इस्लाम पसंद ही नहीं है, वो मुसलमान कैसे होगा। हालांकि इस्लाम मुसलमान होने के वास्ते शर्त है कि इस्लाम ऐसे पसंद हो कि अगर बोला जाए तो आदमी डाल दिए जाओगे, अगर इस्लाम को नहीं छोड़ोगे तो आगे जलना मंजूर करे और इस्लाम को छोड़ना कबारा ना करे, वो है इस्लाम वाला ईमान वाला। अब जो मुसलमान होते हुए कलमा पढ़ते हुए इस्लाम को ऐसा नापसंद करेंगे, उनका इस्लाम वहां कहा, वो मुसलमान कहा रहे, मर्दों के अंदर कोई कोई बगावते, म्यूजिक कितना आम हो गया, तस्वीरें कितनी आम हो गई, वीडियो कितने आम हो गए, जो दूसरे बना रहे उसको हम देख रहे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हम बना रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, जानदारों की तस्वीरों को शरीयत ने हराम कहा तो हराम है, सुअर खाने से जैसे मना किया गया तस्वीर लेने से वैसे ही मना किया गया, शराब पीने को अगर हम शराब की नजर से देखते हैं तस्वीर लेना भी वैसे ही हराम है जैसे शराब पीना है, फर्क नहीं है दोनों में, वो भी उतना ही हराम है, अगर कोई शराब पी रहा है और कोई तस्वीर ले रहा है दोनों बराबर वैसे का गुनाह कर रहे, अगर कोई सुअर खा रहा है और कोई तस्वीर ले रहा है दोनों बराबर वैसे का गुनाह कर रहे, इस्लामी लिबास नहीं है, अहमियत ही नहीं दी जाती इस्लामी लिबास को, अहमियत कैसे नहीं दी जा सकती मेरे दोस्तों, इस्लामी लिबास जरूरी है, इसके बगैर चारेकार नहीं है। निरपा फजल ने फरमाया सहाबा ने कि तुम टोपी भी पहनो और इमामा भी पहनो, क्योंकि मुशरिकीन सिर्फ इमामा पहनते हैं, बात कही, क्या क्या बात कही जा रही है, ये बात कही जा रही है कि इस हद तक दीवाना वो भी पहनते हैं तुम भी पहनते, फर्क करोगे तो भी पहनो तो भी नहीं पहनते। एक ही लिबास में भी मुशावरत को और बराबर होने को गवारा नहीं किया गया, लिबास भी जब बदल जाए तो ये मुशावरत कैसे बदल हो सकती है, इतना भी चेहरा नहीं और उसकी परवाह नहीं है। अल्लाह के रसूल का चेहरा पसंद नहीं है, अल्लाह के रसूल का पसंद नहीं है तो कोई मुसलमान कैसे रहेगा, उन लोगों के वहां पर निकल हो जाते हैं गुना गुना करने वाले, अल्लाह पाक उनकी बख्शीश नहीं करते। ने लिखा है फासिकों को सलाम करना जायज नहीं है, खुल्ला खुल्ला गुना करने वाला फासिक है। आम है, म्यूजिक आम है, मसाजिद के अंदर आने के बाद भी न म्यूजिक से एहतियात है, न फोटो से एहतियात है, न पिक्चरों से, न तो वीडियो से, मसाजिद का तो कम्पेटर एहतराम करना, ये चीज भी अगर हमारी जिंदगी से निकल गई तो आज हम कर रहे हैं तो गैर आकर हमारे यहाँ पर जलाएंगे, और हमारे अंदर ये अहमियत जब खुद में नहीं रहेगी तो हम उसको क्या रोक पाएंगे, जब सारे सारी जगह पर गैरों के तसल्लु से हम घबरा रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर गैरों का गलबा है, उनके ऊपर मुसलमानों पर गैरों का खौफ है, ये सब चीजें हम करेंगे तो खौफ पर मुसलत करेंगे। अमन वो कब देते हैं, वो अमन देते हैं ईमान हमारे सारे बदलो हमारे पास रहा नहीं तो फिर वो अमन क्यों देंगे, वो खौफ को मुसलत करेंगे, दलील करेंगे, दूसरों से पिटवाएंगे मरवाएंगे, यही कुछ हो रहा है। हम इसको समझने के लिए तैयार नहीं, इसके लिए जरूरत है कि हम हर लाइन के हुकूक और फराइज को जाने, हर लाइन के गुनाहों को जाने और मालूम करें और उसके उसके पावर होके चले, फर्ज अदा जिम्मेदारियां हैं वो अदा करें, गुनाह के काम है उसे पूरी तरह बचें, और उसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है। हिम्मत के लिए जब बंदा आगे भी बढ़ता है तब फिर पीछे हट जाता है, ये कहकर कि जब मुझे आगे चल के पाबंदी करना है मुझे होता नहीं है तो मैं क्यों करूँ। अल्लाह ने लिखा है कि अगर दिल ये किस्म के वसवसों में मुबतला करता है फंसाता है तो समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर दोबारा मैं उस गुनाह को करूंगा तो फिर सोने की नियत करूंगा, दोबारा अगर मुझसे हो जाए तो चौथी बार फिर कोशिश करूंगा, 100 बार हो जाए तो फिर 101 बार फिर कोशिश करूंगा, इस कोशिश के साथ में लगा रहे हैं। उन्होंने फरमाया इसका मतलब होता है कि नेकी करने के साथ साथ गुनाहों से बचने की कुव्वत हमने अल्लाह की तौफीक और फजल के बगैर नहीं है। ये दुआ को हर नमाज के बाद या कम से कम एक नमाज के बाद मांगा करे और एक एक गुनाह को छोड़ने की आदत करे, जिसका गुनाह छूट जाए वो भी यही दुआ करे लाखों कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इस नियत से अल्लाह ये गुनाह मुझसे छूट गया आपकी नाफरमानी, लेकिन मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है आपके ही फजल से छूटा। ये नियतें करने की, हिम्मतें करने की, इरादे करने की जरूरत है अपने आप को मौजूदा सूरत हाल जिस तक कोई दोबारा से निकालने के वास्ते और अपनी परेशानी उसे नजात पाने के वास्ते। अब दीन ही कहें हम सबको नसीब फरमाए।